राजयोग शिविर के सत्र में राजयोग का मुख्य आधार पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय। खुद को जानना आसान हो जाता, परंतु खुदा को जानना मुश्किल होता है, और इसीलिए शायद आज दिन तक हमारे मन की ये शिकायत बनी रही कि मेरा मन ईश्वर में लगता नहीं है, क्योंकि ईश्वर का यथार्थ परिचय अगर हो तब तो उसमें लग सके, पता ही ना हो तो कैसे लगेंगे। और जब तक ईश्वर में मन नहीं लगता है तब तक हम अपनी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी जब एकदम डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको चार्ज करने के लिए जनरेटर जरूरी है, और जनरेटर का भी पूरा नॉलेज चाहिए। जब तक उसके साथ कनेक्शन न हो तब तक बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। तो वो परमात्मा कौन है? कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई और वहां एक भारतीय बहन मुझे कहने लगी कि मेरा बेटा 17 साल का है और वो मुझे सवाल पूछता है कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन में एक गॉड क्यों है। वो मां उस बच्चे को कहती है, बेटा हिंदू धर्म में ये सब भगवान है। वो बच्चा कहता है, सब भगवान नहीं हो सकता है, भगवान एक होना चाहिए, और अगर ये सब भगवान है तो इन सब का हेड कौन है? परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो अगर ये भगवान भगवतियों की फैमिली भी है तो इन सबका हेड कौन है? वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है, और इसीलिए जब भी वो मां अपने बच्चे को कहती है, कोई स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल होता है तो, कि बेटा मंदिर चलो, वो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई कॉन्सेंट्रेट माई माइंड। और जब मेरा मन ही कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है तो आई फील आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, सो वाई शुड आई गो टू द टेम्पल, उससे तो मैं चर्च में ना जाऊं, यहां एक गॉड की प्रतिमा है तो कम से कम मैं अपने मन को तो एकाग्र कर सकता हूं। वो मां को बड़ा दुख होता है कि मेरे बेटे के प्रश्न का जवाब मैं नहीं दे पाती हूं, और इसीलिए ये नास्तिक बनता जा रहा है। ये उसकी प्रॉब्लम थी कि वो अपने बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती थी, परंतु जो भारत में रह रहे हैं, आज मैं आप सबसे यही बात पूछूं कि मानो कल को आपके बेटे ने आपसे यही सवाल किया या आपके पोते ने आपसे यही सवाल किया कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन में एक गॉड, मुसलमानों में एक अल्लाह क्यों है, तो क्या आपके पास उसका जवाब है? क्योंकि आजकल के बच्चे को हर बात में एक लॉजिक चाहिए जो उसके लॉजिक को अपील करे, ऐसी बातें चाहिए। ये वो समय नहीं है कि जब हमारे माता पिता ने कहा कि ये सब भगवान है तो हम सबके सामने हाथ जोड़ के नमन करते रहे आज का बच्चा ऐसा नहीं करेगा। तो क्या इसका जवाब आपके पास है? और अगर आपके बच्चे ने भी मंदिर जाना छोड़ दिया तो क्या आपको दुख होगा? क्या कहें? इसीलिए भी सत्य को जानना जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियां कहती है क्या इसको मान लेना है। कुछ समय पहले मैंने एक कार्टून देखा और उस कार्टून में एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था ईश्वर कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान है तो प्रूव इट। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीशन लिया होगा, सत्य किसको कहा जाए? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? क्या कहेंगे? वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथीघर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन गए हाथीघर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का वर्णन कर लिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और कान आए तो कहा सुप जैसा है। आखिर हाथी कैसा था? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे? क्या है सत्य? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, सत्य कुछ और था। ठीक इसी तरह ईश्वर के बारे में जो इतनी मते हैं, क्या ये सभी सत्य है? क्योंकि अगर देखा जाए तो सारी मते एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या नेचर को परमात्मा कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे? तो सत्य क्या है ईश्वर के विषय में? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हम समझ ही नहीं पाए। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा क्या हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं। आज हम आपको मत नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतनी मतें हैं और आप इतने कंफ्यूज स्टेज में हैं, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते। परंतु आज हम आपको एक कसौटी देंगे। जैसे एक झवेरी होता है, उसके पास एक कसौटी रहती है जिस पर वो कस कर देखता है सोना कितना कैरेट का है, और उसके बाद उसकी कीमत का निर्णय देता है। 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है। ठीक इसी तरह ईश्वर किसको कहा जाए, उसको पहचानने की कोई कसौटी और ये कसौटी है पांच बातें। सबसे पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे परमेश्वर। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन एंड सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। एक पिता पांचों बच्चों के लिए एक समान है, अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक इसी तरह ईश्वर एक है। दूसरा, परमेश्वर उसको कहा जाए जो सर्वोच्च शक्ति हो, सुप्रीम अथॉरिटी, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे परमेश्वर। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, नहीं तो वो उनसे श्रेष्ठ हो गया। उसका कोई गुरु नहीं हो सकता है, नहीं तो वो उनसे श्रेष्ठ हो गया। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो संसार के सभी चक्रों से परे हो, सर्वोपरि। मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र, देह और देह के संबंधों का चक्र, कर्म और कर्म के फल का चक्र, पाप और पुण्य का चक्र, सुख और दुख का चक्र, ये सभी चक्रों में हम आत्माएं आते हैं। ईश्वर इस सभी चक्र से ऊपर है, न जन्म है न काल उसको खा सकता है, अकाल मूरत है, न कर्म है न उसका फल भोगते हैं। तो जो सभी चक्र से ऊपर है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, ज्ञाता हो, जिसके पास संसार के तीनों कालों का ज्ञान हो, त्रिकालदर्शी जिसको कहते हैं, त्रिलोकी नाथ जिसको कहते हैं, जो तीनों लोकों का नाथ हो, त्रिनेत्री जिसको कहते हैं, जो ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, और त्रिमूर्ति जिसको कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जुड़ती है, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर परमेश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, इतनी अनंत जिसकी महिमा हो उसको कहेंगे परमेश्वर। ये पांच बातें हैं कसौटी। अब इस कसौटी पर एक एक मत को कसकर देखो, सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करना है। जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या सभी धर्म वाले ईश्वर को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? ना? हम अभी सत्य को देखने बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं। अब तक लोगों की अपनी मान्यता रही है, उसको हम ठुकरा नहीं रहे हैं, लेकिन कम से कम सत्य को समझना तो चाहिए, या अंधविश्वास के साथ उसी को पकड़ के बैठना चाहिए? और इसीलिए कहा कि जब वो किसी कवि के गीत की लाइन याद आती है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है। तो आप का विवेक क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, गुरु लोग क्या कहते हैं, उन सबको अभी बाजू पे रखे, इस कसौटी पे आधार पर आपका विवेक, आपका लॉजिक किस बात को स्वीकार करता है, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि नहीं तो उलझते रहेंगे जीवन भर, अगर सत्य को समझाई नहीं तो। तो इसलिए आपका विवेक क्या कहता है, प्रकृति ही परमेश्वर है या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? रचना है कहना सत्य है। दूसरे की बातें नहीं सोचो, ये सारी दुनिया मानने वाली नहीं, आप क्या मानते हैं ये महत्व है, क्योंकि तभी आप अपने बच्चों को गाइड तो कर सकेंगे। कल को अगर आपके बेटे ने आपसे यह सवाल पूछा तो उसको गाइड कर सकेंगे कि नहीं? तो इसीलिए कहा कि प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना अगर सत्य है, तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने कह दिया प्रकृति परमेश्वर है। सत्य ये है प्रकृति परमेश्वर की रचना है। दूसरा, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे ये क्यों गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, हम ही परमात्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के आगे ये गाने की जरूरत है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे? तो सत्य क्या है? आत्मा ही परमात्मा है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है। अगर आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है, तो आत्मा सो परमात्मा कहना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। कई लोग क्या सोचते हैं कि जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करें तो परमात्मा बन सकते हैं। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो मैंने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया तो प्राप्त कर लिया। दुनिया में मनुष्य अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से, लगन से कोई भी पोजीशन को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है? बन सकता है, बाप जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता के कारोबार को संभाल सकता है, पिता जैसा बनकर छोटे भाई बहनों को बड़ा कर सकता है, परंतु जब वो पिता के सामने जाता है तो बच्चा ही रहेगा। प्रॉपर्टी का जब झगड़ा होता है तो छोटे भाई बहने भी क्या कहते, आप हमारे पिता समान हो, लेकिन पिता बनने की कोशिश नहीं करना, कहते हैं ना। वो भी उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं पिता के रूप में। पिता समान कहेंगे, पिता नहीं कह सकते। ऐसे मनुष्य अपने कर्म से जो टाइटल चाहे प्राप्त कर सकता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो वो पुण्यात्मा बन जाता है, किसी ने महान कर्म किया तो वो महात्मा बन जाता है, किसी ने धर्म का काम किया तो वो धर्मात्मा बन जाता है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो देवात्मा बन जाता है। देवात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्माएं ये शब्द ग्रामर में होता ही नहीं, गॉड इज वन। और ये सब भी आत्माएं, परमात्मा नहीं है। पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महात्मा, महान आत्मा, महान परमात्मा भी नहीं कहा, धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा, देव परमात्मा भी नहीं कहा। ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा एक है। कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे एक सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ी परमात्मा है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और सब आत्मा के रूप में नीचे आए, इसलिए कहते हैं हम परमात्मा के अंश हैं। अंश के रूप में आकर के संसार में सभी फैल गए और अंत में जाकर के उस बड़ी परमात्मा में मिल जाना है, लीन हो जाना है। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि वो मैटर है, मैटर मैटर में समा सकता है। आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है, इसलिए उसकी कंपैरिजन मैटर के साथ नहीं की जा सकती है। आत्मा और परमात्मा के लिए यही कहा गया है, अजर अमर अविनाशी, उसका अस्तित्व का विनाश नहीं होता है, और अविनाशी जिसका अस्तित्व सदा शाश्वत है, तो उसके टुकड़े कैसे होंगे और मिलेंगे कैसे? एनर्जी के लिए हमेशा यही कहा जाता है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आत्मा का अस्तित्व भी सदा के लिए है। गीता में कहा है कि न उसको तलवार से काटा जाता, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकती, न हवा सुखा सकती है। उसका अस्तित्व सदा शाश्वत है, तो उसकी कंपैरिजन मैटर के साथ नहीं की जा सकती है। मैटर मैटर में समा सकता है, आत्मा या परमात्मा मैटर नहीं है। दोनों इटर्नल इटर्नल एंटिटी। जब कहते हैं इटर्नल एंटिटी माना जो सदा शाश्वत है, कॉन्शियंट एंटिटी माने एक चैतन्य शक्ति है, जिसका न क्रिएशन होता है न जिसका विनाश होता है। तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? आत्मा परमात्मा की संतान है, आत्मा सो परमात्मा कहना ये अज्ञान था। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? वंश है, हम संतान है, टुकड़े नहीं है, अंश नहीं है। तीसरा, जब कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, कल हमने देखा कि ब्रह्म क्या है, पांच तत्व की दुनिया से ऊपर एक छठा तत्व है, जिसको कहा गया है ब्रह्म महतत्व, जिसको अनेक धर्मों में अनेक नामों से जाना गया, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड, फिर रूहानी दुनिया, सातवां आसमान, सचखंड, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिए हैं। तो क्या वो तत्व जो एक दिव्य लोक है, जहां आत्मा और परमात्मा दोनों ही निवास करते हैं, जहां आत्माएं भी आसमान में जैसे सितारे हैं ऐसे अपने इटर्नल फॉर्म में रहते हैं, शाश्वत रूप में रहते हैं, जहां परमात्मा भी रहते हैं, इसीलिए भजनों में गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म महातत्व जो है उसमें रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। दोनों बातें हम अज्ञानता के कारण कहते रहे, ब्रह्म ही ईश्वर है भी कहा, पार ब्रह्म परमेश्वर भी कहा। आपका विवेक किस बात को सत्य स्वीकार करता है, ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है, या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है, तो ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है। चौथा, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, कूड़ा कचरा गंद गटर सब में ईश्वर है, क्या आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में ईश्वर बैठा है? तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं कि नहीं, सभी प्राणियों में है, मनुष्य में और सभी पशु पक्षियों में, आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहां तक सत्य है? अगर सब में ईश्वर बैठा है, आत्मा भी और परमात्मा भी है, और एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान की इतनी भी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को बुरे कर्म से रोक सके? इतनी भी पावर नहीं है उसके पास, तो फिर सर्वशक्तिमान किस बात में कहा? आज घर में अगर बच्चे हैं, अगर वो खेल रहे हो किसी चीज को लेकर के, खिलौने को लेकर के, और कुछ बात से दोनों में झगड़ा हो जाए, माँ बाप अगर सामने बैठे हैं तो देखते रहेंगे उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे, क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। एक शारीरिक माता पिता भी अपने बच्चों को लड़ते हुए नहीं देख सकता है, तो परमात्मा जो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर, वो अगर सब में बैठा हुआ है और मनुष्य इतना आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और वो कुछ कहे ही नहीं, तो उसका बैठने का कोई मतलब क्या मतलब है फिर? देखो, कभी भी हमें कोई बात पूछता है या बताता है और हमें मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? कहते हैं, कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला जाने। फिर ये ऊपर वाला कौन है और जो सब में व्यापक है वो कौन है? गलती से भी हमने ये नहीं कहा नीचे वाला जाने, ऊपर वाला। गीता में जब भगवान ने ये वायदा दिया है चौथे अध्याय में, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूँ, ये उसका प्रॉमिस है। अगर वो यही है तो कौन आएगा? अगर वो यही है तो इसके होते इतना अधर्म कैसे? या तो गीता के ये महावाक्य गलत है या तो सर्वव्यापकता की बात सही है, दोनों में से एक ही सत्य होगा ना। अगर भगवान वाच ये है कि अधर्म के समय पर मैं आता हूं तो वही सत्य होगा। उसकी महिमा में भी गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन, कहते हैं ना, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है। गीता में जब भगवान ने खुद कहा कि हे अर्जुन, मेरा धाम परम धाम है, जहां ये सूर्य चंद्र तारों की रोशनी उसको प्रकाशित नहीं कर सकती है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशित है वो धाम मेरा धाम है, गीता के महावाक्य। आज प्रकृति के अंदर भी ये गुण है कि अपने गुण को ट्रांसफर कर सकता है। अग्नि के अंदर लोहा रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। अगर प्रकृति अपना गुण ट्रांसफर कर सकती है, परमात्मा जो गुणों में अनंत है, और अगर वो हम सबके बाजू में बैठा है और उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें न लगे, ऐसा हो सकता है? आज मनुष्य भी थोड़े दिन किसके संग में रहता है तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी संग का रंग लग जाता है। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक शिकारी दो तोता पकड़ कर ले आया, बाजार में बेचने बैठा। एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए, दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। थोड़े ही दिन में देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था राम राम कर रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। अगर पशु पक्षी को भी संघ का रंग लग जाता है तो परमात्मा अगर हम सबके बाजू में बैठा है, पारस है, और पारस का कोई संघ का रंग ही हमें न लगे, हम लोहे के लोहे रह जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। लेकिन तब फिर सवाल आता है कि शास्त्रों में ही तो लिखा गया है, सर्वव्यापी है, शास्त्र गलत है क्या? शास्त्र भी गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी बात जब शास्त्र में लिखी गई है तो उसके पीछे कोई न कोई भाव है। मनुष्य ने शायद उस भाव को समझा नहीं। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र कब लिखे? तो कहा जाता समाधि अवस्था में लिखे। बहुत ऊंची वो मानसिक स्थिति होती थी, और जब वो समाधि में बैठते थे तो दे वर एबल टू सी थ्रू टाइम, समय को देख सकते थे। और जब वो ये देखते थे कि जब कलयुग आएगा तो कितना घोर पाप कर्म होगा, मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य पाप कर्म करने से डरे और पाप कर्म न करे, सुरक्षित रहे। जैसे एक छोटा बच्चा जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस समय माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं रास्ते पर न चला जाए। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता दिखाएगी और कहेगी, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाए ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। वो बच्चा घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता है और जैसे ही कुत्ते को देखता है तो क्या करता है, वापस अंदर आ जाता, खुश होता है, मैं सुरक्षित हूं, नथिंग हैज हैपन टू मी, आई एम सेफ, है ना? उसी बात को वो सत्य मान लेता है और सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी है, इतना भी नहीं समझती है, कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला थोड़ी है, और हंसता हुआ निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठा के खुद घर में ले आएगा, कहेगा लो मैं ही लेके आया। जिस बात को उसने पहले सत्य मान लिया था और सुरक्षित रहा, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह ऋषि मुनियों ने जब ये बात कही, और जैसे कलयुग आरंभ हुआ, मनुष्य भी पाप कर्म नहीं करता था, कोई अगर उनको प्रेरित भी करता था पाप करने के लिए तो क्या कहते थे, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ये ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार बन गया, और इसलिए जब वो पाप करता है और कोई उसको याद भी दिलाता है क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, वही डायलॉग है, भाव बदल गया। पहले कहता था बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है। पाप न करने में अपनी इज्जत समझता था, और आज क्या कहता है, बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। आज पाप करने में अपनी इज्जत समझता है, कहने का भाव सर्वव्यापकता की बात भी एक भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं कि ये माइक में भी परमात्मा इसलिए मैं बैठ के उसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के मैं उसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा हो जाती है। भावना को लेकर चलना बड़ी ऊंची बात है। आज हम भी कहीं बाहर जाते हैं और कोई हमें पूछता है, बहन जी आप अकेले हैं, तो हम कहेंगे नहीं, भगवान मेरे साथ है। इस भाव को लेकर चलने की बात है तो कभी जीवन में पाप कर्म नहीं होगा। ये बहस करने का विषय नहीं है। कई लोग हमारे साथ बहस करने लगते, आप क्या समझते हैं, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कैसे ये कह सकते हैं। हम यही उनको सवाल करते हैं, बहस नहीं करो, क्या आप जीवन में इस भाव को लेकर चल रहे हैं? और अगर आप इस बात को मानते हैं और लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब आपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा। बहस क्या करते हैं? हम तो इस भाव को लेकर चल रहे हैं। हम पूजा नहीं करते हैं कि बैठकर टेबल की मैं पूजा करूं, लेकिन इस भावना को अपने हृदय में साथ में लेकर चलने की बात है। ऋषि मुनियों ने इसी भावना से ये बात को लिखा था, तो हमेशा पाप कर्म से बचे रहेंगे। पाप भी कर रहे हो और फिर आर्ग्यू